मेरे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने एक वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ने का निर्णय लिया है, परंतु बहुत बार मेरे ये मित्र मेरे पास आकर मुझसे कहते हैं, रिचर्ड, जब मैं पुराने नियम की भविष्यवाणी को पढ़ना शुरू करता हूं तो मुझे लगता है जैसे कि मैं एक बहुत बड़े जंगल में खो गया हूं। हम में से अनेकों के साथ ऐसा ही होता है। हम सोचने लग जाते हैं कि हम भविष्यवक्ताओं के बारे में जानते हैं, परंतु शीघ्र ही हम पाते हैं कि हम बिना किसी लक्ष्य के भटक रहे हैं, क्योंकि हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के विषय में बहुत अनजान हैं। इस अध्याय में हम बाइबल के इस भाग के विषय की जानकारी पाने का आरंभ करने जा रहे हैं। अतः हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है, भविष्यवक्ताओं का साहित्यिक विश्लेषण। इस अध्याय में हम तीन भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्यों पर ध्यान देंगे जो कि पुराने नियम की संपूर्ण भविष्यवाणी में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक वर्णन, वे कहानियां जो उन घटनाओं को बताती हैं जो भविष्यवक्ताओं के जीवनों में घटी थीं। दूसरा, परमेश्वर के साथ वार्तालाप, वे अनुच्छेद जो परमेश्वर को संबोधित करते हुए भविष्यवक्ताओं की प्रार्थनाओं और प्रशंसा को बताते हैं। तीसरा, लोगों के साथ वार्तालाप, वे बातें जो भविष्यवक्ताओं ने दूसरे लोगों से कही थीं। इस बात को समझना कि किस प्रकार ये भिन्न भिन्न साहित्य भविष्यवाणीय पुस्तकों में मिलते हैं हमें एक मानचित्र प्रदान करते हैं जो हमें उन खजानों की ओर लेकर जाएगा जो बाइबल के इस भाग में हमारा इंतजार करते हैं। प्रत्येक जन को अच्छी कहानी पसंद है, इसीलिए हम पुस्तकें पढ़ते हैं और फिल्में देखने जाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि कहानियां हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती बल्कि उससे अधिक कार्य करती हैं। वे हमारी कल्पनाओं को भी जगाती हैं और हमें इस तरह से बदलती हैं जो कभी कभी अकल्पनीय होता है। जब हम बाइबल के बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सी कहानियां या वर्णन हैं, परंतु सामान्यतः हम उत्पत्ति, निर्गमन और गिनती को ही ऐतिहासिक वर्णन मानते हैं। परंतु हमें यह भी देखना आवश्यक है कि पुराने नियम की भविष्यवाणी पुस्तकों में भी बहुत से ऐतिहासिक वर्णन हैं। ऐतिहासिक वर्णन पुराने नियम के अनेक भविष्यवाणी पुस्तकों में अधिकता से पाए जाते हैं। सूची में सबसे ऊपर है योना। शुरू से लेकर अंत तक यह योना की कहानी और नीनवे नगर में उसकी सेवकाई के बारे में बताता है। दानियल की पुस्तक का एक बड़ा भाग भी ऐतिहासिक वर्णन है। दानियल के दर्शन और उसकी भविष्यवाणियां भी ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में रखी गई हैं। इससे बढ़कर यिर्मयाह और यहेजकेल जैसी पुस्तकों के कई अध्याय भी ऐतिहासिक वर्णनों को दर्शाते हैं। कुछ कम मात्रा में ऐसे वर्णन होशे, आमोस और यशायाह जैसी पुस्तकों में कहीं कहीं पाए जाते हैं। जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करते हैं तो हमें सदैव ऐतिहासिक वर्णनों की खोज में रहना चाहिए। वे अनेक पुस्तकों के महत्वपूर्ण भागों की रचना करते हैं। हम दो विषयों पर केंद्रित होने के द्वारा भविष्यवाणी में ऐतिहासिक वर्णन की भूमिका की जांच करेंगे। पहला, वर्णनों के प्रकार जो हम पाते हैं, और दूसरा, इन वर्णनों की विषय वस्तु। आइए पहले हम वर्णनों के उन प्रकारों पर ध्यान दें जो हम भविष्यवाणी पुस्तकों में पाते हैं। पुराने नियम की भविष्यवाणियों में दो मूलभूत प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं, जीवन कथा और आत्मजीवन कथा। जिस प्रकार ये दोनों शब्द दर्शाते हैं, जीवन कथाएं किसी तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का लेखा जोखा होता है और आत्मकथाएं पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताई जाती हैं। कुछ विषयों में जीवन कथा रूपी और आत्मकथा रूपी वर्णन एक ही पुस्तक में प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर दानियल की पुस्तक के पहले 6 अध्याय दानियल के जीवन की कई घटनाओं को तीसरे व्यक्ति के जीवन कथात्मक दृष्टिकोण से दर्शाते हैं। अध्याय 1 में हम बेबीलोन में दानियल के प्रशिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 2 में हम एक बड़ी मूर्ति के विषय में नबूकदनेस्सर के स्वप्न और दानियल द्वारा उस स्वप्न के अर्थ बताने के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 3 उस प्रसिद्ध आग की भट्टी की कहानी है और अध्याय 4 एक वृक्ष के बारे में नबूकदनेस्सर के स्वप्न और दानियल द्वारा बताए गए अर्थ को बताता है। और फिर अध्याय 5 उस जाने माने समय के बारे में बताता है जब बेलशस्सर ने दीवार पर हाथ की लिखावट को देखा था। और अध्याय 6 शेर की गुफा में दानियल के वर्णन को बताता है। ये सभी अध्याय जीवन कथा का आकार लेते हैं। वे पुराने नियम के भविष्य वक्ता दानियल के बारे में तीसरे व्यक्ति के लेखनों की रचना करते हैं। यद्यपि दानियल की पुस्तक के पहले 6 अध्याय जीवन कथात्मक हैं, परंतु अध्याय 7 से 12 आत्मकथा की ओर मुड़ जाते हैं। हर भाग का आरंभ छोटे परिचयों से होता है, परंतु यह पहले व्यक्ति के वर्णनों से भरा हुआ है। दानियल अपने शब्दों में स्वयं बताता है कि उसके साथ क्या होता है। अध्याय 7 4 पशुओं के स्वप्न के बारे में दानियल के अपने वर्णन को बताता है। अध्याय 8 में दानियल मेमने और बकरे के बारे में अपने दर्शन के विषय में बताता है। अध्याय 9 बंधुआई में गए लोगों के वापस अपनी भूमि पर लौटने की दानियल की प्रार्थना के आत्मकथा रूपी वर्णन को दर्शाता है। और अध्याय 10 से 12 परमेश्वर के लोगों के भविष्य के बारे में दानियल के दर्शन के आत्मकथात्मक वर्णन को बताता है। जब हम पुराने नियम की भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं तो हम कई जीवन कथाओं और कई आत्मकथाओं को पाएंगे, और जब हम इन शैलियों को देखें तो हमें उनके बारे में जानना आवश्यक है। पुराने नियम के लेखकों ने ऐतिहासिक वर्णन के रूप में लिखा ताकि वे अपने अध्यायों को अप्रत्यक्ष रूप से हमें सिखा सकें, और यदि हम इन शैलियों को नहीं देखते तो हम उन महत्वपूर्ण संदेशों को नहीं देख पाएंगे जो वे हमें देते हैं। यह देखकर कि ऐतिहासिक वर्णन भविष्यवाणीय पुस्तकों में प्रभावशाली रूप में पाया जाता है, अब हम इस स्थिति में हैं कि एक और प्रश्न पूछें। इन वर्णनों की मूल विषय वस्तु क्या थी? भविष्यवक्ताओं की सारी पुस्तकों में हम पाते हैं कि ऐतिहासिक वर्णन 4 मुख्य निर्देशों पर ध्यान देते हैं। पहला, भविष्यवाणीय बुलाहट। दूसरा, प्रतीकात्मक कार्य। तीसरा, दर्शन के वर्णन। और चौथा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां। भविष्यवाणीय बुलाहट उन समयों का वर्णन है जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उसके बारे में बात करने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार के वर्णन अनेक मुख्य अनुच्छेदों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 6 परमेश्वर द्वारा यशायाह को बुलाहट देने का वर्णन करता है। यिर्मयाह अध्याय 1 बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी वाचा का प्रतिनिधित्व करने के लिए यिर्मयाह को बुलाया। और उसी प्रकार यहेजकेल अध्याय 2 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने यहेजकेल को एक बहुत ही विशेष रूप में अपनी सेवा करने के लिए बुलाया। इन सारे अनुच्छेदों में हम कहानियों या ऐतिहासिक वर्णनों को पाते हैं, और हम परमेश्वर के समक्ष भविष्य वक्ता की विनम्रता को पाते हैं, और यह भी कि किस प्रकार भविष्य वक्ता आश्वस्त थे कि परमेश्वर ने उनकी सेवाओं को अधिकार दिया है। भविष्य वक्ता की बुलाहट की कहानियां इस बात का महत्व बताने या दर्शाने के लिए रखी गई थीं कि परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को अपनी आज्ञा पूरी करने के लिए बुलाया था, और यह महत्वपूर्ण था क्योंकि पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने प्रायः ये बातें कही थीं जो बहुत अधिक प्रचलित या स्वीकार करने योग्य नहीं थीं। और हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इन कहानियों ने इस बात का महत्व बताया कि परमेश्वर ने इन लोगों को उसकी सेवा करने के लिए बुलाया था। जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को सुनते हैं तो हम ऐसी बातें भी सुनेंगे जो हमें अच्छी नहीं लगती या जिन्हें हम स्वीकार करना नहीं चाहते। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए थे। भविष्यवाणी पुस्तकों में पाए जाने वाले ऐतिहासिक वर्णन भविष्यवक्ताओं के प्रतीकात्मक कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुत बार परमेश्वर ने अपने वक्ताओं को कुछ खास कार्य करने के लिए बुलाया, जिन्होंने उनकी सेवकाई के लिए प्रतीकात्मक कार्य किया। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह अध्याय 13 में यहूदा के भ्रष्टाचार को दर्शाने के लिए भविष्यवक्ता को कहा गया कि वह अपने कमरबंद को जाकर तब तक गाड़ दे जब तक वह सड़ ना जाए। अध्याय 19 में यहूदा में होने वाली घटना के प्रतीक के रूप में यिर्मयाह को कहा गया कि वह मिट्टी के एक बर्तन को खरीदे और अगुओं की उपस्थिति में उसे तोड़ दे। और अध्याय 32 में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह आश्वासन देने के एक चिन्ह के रूप में यिर्मयाह को भूमि खरीदने और उसके दस्तावेजों को संभाल कर रखने का निर्देश दिया कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों को उनकी भूमि पर लौटा ले आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक में ये उदाहरण उन अनेक प्रतीकात्मक कार्यों के थोड़े से उदाहरण हैं जो भविष्यवाणी पुस्तक में होते हैं। होशे और यहेजकेल जैसी पुस्तकें ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग उसे अपनी आंखों से देख सकते थे जो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के शब्दों के माध्यम से कह रहा था। और जब हम इन वर्णनों को पढ़ते हैं तो हम भी अपनी आंखों से देख सकते हैं जो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कह रहा था। भविष्यवक्ताओं की बुलाहटों और प्रतीकात्मक कार्यों के वर्णनों के अतिरिक्त हम भविष्यवाणी पुस्तकों में एक तीसरे प्रकार ऐतिहासिक वर्णन को पाते हैं, दर्शन के वर्णन। दर्शन के वर्णन वे अनुच्छेद हैं जहां भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ दर्शन रूपी भेंट का वर्णन करता है। दर्शन के वर्णनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आमोस अध्याय 7 पद 1-9 में पाई जाती है। यह अनुच्छेद वास्तव में तीन दर्शनों का वर्णन है। पहला, अध्याय 7 पद 1-3 में यहोवा आमोस को टिड्डियों का एक झुंड दिखाता है जो उत्तरी इसराइल को नाश करने वाला था, परंतु आमोस ने इस दर्शन के प्रति एक प्रत्युत्तर दिया। अध्याय 7 पद 2 में उसने ये शब्द कहे, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। आमोस को इस बात की चिंता थी कि परमेश्वर के लोगों में से बचे हुए लोग भी टिड्डियों की ऐसी भयानक बीमारी से बच नहीं पाएंगे, और इसलिए पद 3 में परमेश्वर नरम पड़ा और टिड्डियां ना भेजने का निर्णय किया। लगभग इसी प्रकार आमोस के 7वें अध्याय के पद 4-6 में परमेश्वर आमोस को यह दिखाता है कि कैसे वह उत्तरी इसराइल को नाश करने के लिए आग या सूखा भेजने का आदेश देता है। आमोस अध्याय 7 पद 5 में आमोस ने पुनः प्रत्युत्तर दिया और प्रभु के सामने रोया, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। पद 6 में परमेश्वर एक बार फिर नरम पड़ता है। तब एक तीसरे दर्शन का वर्णन आमोस अध्याय 7 पद 7-9 में किया गया है। इस बार आमोस ने परमेश्वर को अपने हाथ में साहुल लिए हुए एक दीवार के साथ खड़े हुए देखा। वह यह देखने के लिए दीवार को नाप रहा था कि क्या वह टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं और क्या उसे ध्वस्त करने की आवश्यकता तो नहीं। अब इस साहुल ने उस बात को दर्शाया कि परमेश्वर अपने लोगों में से हर व्यक्ति का न्याय करेगा और केवल उन्हें ही नाश करेगा जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। आमोस के पास इस दर्शन के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। वह जानता था कि परमेश्वर के लोगों में से धर्मी लोग तो बच ही जाएंगे। भविष्यवाणी पुस्तकें इस प्रकार के दर्शनों के वर्णनों से भरी हुई हैं। आप यहेजकेल के पहले अध्याय को तो याद करते होंगे। और आप दानियल के अनेक दर्शनों को भी याद करेंगे। भविष्यवाणीय दर्शन के वर्णन हमें भविष्यवाणीय वचनों के स्वर्गीय उद्गम के बारे में बताते हैं। अब भविष्यवाणीय बुलाहटें और प्रतीकात्मक कार्य और दर्शन के वर्णनों के अतिरिक्त भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में कई ऐतिहासिक वर्णन हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार के वर्णन भविष्यवाणीय पुस्तकों में यहां वहां बिखरे हुए पाए जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण यशायाह 7 और 8 अध्यायों में पाया जाता है। यह अध्याय उस ऐतिहासिक संदर्भ को प्रदान करते हैं जिनमें यशायाह अध्याय 7 पद 14 की जानी मानी भविष्यवाणी पाई जाती है। यशायाह अध्याय 7 पद 14 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अब अधिकांश मसीही इस पद के आसपास के वर्णनों पर अधिक ध्यान नहीं देते, अर्थात यशायाह अध्याय 7 और 8 के वर्णन। यह अध्याय यशायाह के भविष्यवाणीय वचनों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। यशायाह अध्याय 7 पद 1 से 2 में हम पाते हैं कि यशायाह इस समय आहाज के पास जा रहा था जब वह सीरिया और उत्तरी इसराइल से डरा हुआ था। ये राष्ट्र चाहते थे कि राजा आहाज असीरिया के साम्राज्य के विरुद्ध उनके गठबंधन में शामिल हो जाए। इसलिए अध्याय 7 पद 3 से 11 का वर्णन हमें बताता है कि यशायाह ने आहाज को एक चेतावनी दी। उसने उसे इन राष्ट्रों से ना डरने बल्कि अपने छुटकारे के लिए यहोवा पर भरोसा रखने की भी सलाह दी। परंतु अध्याय 7 पद 12 में हम पाते हैं कि आहाज ने परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए अध्याय 7 पद 13 से अध्याय 8 पद 18 के ऐतिहासिक वर्णन स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार यशायाह ने आहाज को डांटा और घोषणा की कि परमेश्वर असीरियाई साम्राज्य के द्वारा यहूदा को दंड देगा। इस ऐतिहासिक वर्णन की रचना इस अनुच्छेद में यशायाह की भविष्यवाणियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में एक संदर्भ को प्रदान करने के लिए की गई थी। हम यशायाह की भविष्यवाणियों को सही रूप से समझने की आशा तभी कर सकते हैं जब हम इस ऐतिहासिक वर्णन के संदर्भ उसकी भविष्यवाणियों को रखते हैं। जब कभी भी हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और एक कहानी को पाते हैं तो हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछने चाहिए, क्या हम बुलाहट के वर्णन को पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रतीकात्मक कार्य के वर्णन को पढ़ रहे हैं, या क्या हम दर्शन के वर्णन को, या केवल एक ऐतिहासिक वर्णन को देख रहे हैं जो हमें भविष्यवाणी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देता है। जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो हम अपने आप को उन अनुच्छेदों को समझने के योग्य पाएंगे जिन्हें हम पहले समझ नहीं पाते थे। भविष्यवाणीय साहित्य के हमारे अध्याय में अब तक हम देख चुके हैं कि भविष्य वक्ताओं ने अपनी पुस्तकों में ऐतिहासिक वर्णनों को शामिल किया है। अब हमें उस दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री की ओर मुड़ना है जो बाइबल के इस हिस्से में पाई जाती है, परमेश्वर के साथ भविष्य वक्ता की बातचीत। पुराने नियम के भविष्य वक्ता वे स्त्री और पुरुष थे जो परमेश्वर से प्रेम करते थे और इसलिए उनके जीवन प्रार्थना से भरे हुए थे। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि वे अपनी बाइबल से प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी बाइबल से प्रार्थना करना सीखा था, और इसलिए हम पाते हैं कि पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं ने उन रूपों में परमेश्वर से प्रार्थना की जैसे भजनकारों ने की थी। हर प्रकार की प्रार्थना भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में पाई जा सकती है। सरल रूप में बताने के लिए हम प्रार्थनाओं के 2 रूपों को दर्शाएंगे जो हम भविष्य वक्ताओं में पाते हैं। पहले हम विलाप की प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे और फिर स्तुति की प्रार्थनाओं के बारे में। जब भविष्यवक्ता परमेश्वर से बात करते थे तो वे दुख और आनंद की विशालता के प्रति अपने हृदयों को खोल देते थे। आइए पहले हम यह देखें कि भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार विलाप की प्रार्थनाओं में स्वयं को अभिव्यक्त किया। दुर्भाग्यवश आज अनेक मसीही उस प्रकार की प्रार्थना से अपरिचित हैं जिसे हम विलाप की प्रार्थना कहते हैं। ये वे प्रार्थनाएं हैं जो प्रभु के समक्ष निराशा, उदासी और असमंजस को रखती हैं। हमारे समय में अनेक मसीही सोचते हैं कि इस प्रकार से प्रार्थना करना अनुचित है, परंतु हम पाते हैं कि पुराने नियम के भविष्य वक्ता हमें बताते हैं कि उस प्रकार की प्रार्थनाएं प्रभु के साथ हमारे जीवनों का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। भविष्य वक्ताओं ने अपने असमंजस, अपनी निराशा और अपनी उदासी को प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप दिया था। विलाप की प्रार्थनाएं सारे भविष्य वक्ताओं में पाई जाती हैं, विशेषकर यिर्मयाह। विलाप गीत और हबक्कूक अपने गहन विलाप के कारण जानी पहचानी पुस्तकें हैं, परंतु इस प्रकार की प्रार्थनाएं भविष्यवाणी की कई पुस्तकों में पाई जाती हैं। बल्कि हग्गै की पुस्तक ही भविष्यवाणी की एकमात्र पुस्तक है जिसमें ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो विलाप की प्रार्थना से संबंधित हो। भविष्यवाणी की पुस्तकों में विलाप की प्रार्थनाओं की अधिकता दर्शाती है कि यह भविष्यवाणी या सेवकाई का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग थी। भविष्यवक्ताओं ने विलाप के द्वारा अपनी बातों को प्रभु के सामने रखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों के इतिहास में सबसे बुरे समयों का सामना किया था। यह देखना कि विलाप किस प्रकार से पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में प्रकट होते हैं हमें इस बात को महसूस करने में सहायता करता है कि भविष्यवक्ता सामान्यतः दो भिन्न विषयों पर विलाप करता है। पहला, परमेश्वर के लोगों के पाप, और दूसरा, पाप के विरुद्ध परमेश्वर का दंड। भविष्यवक्ताओं के विलाप के इन दो विषयों को दर्शाने का एक अच्छा तरीका हबक्कूक की पुस्तक में पाए जाने वाले विलाप को देखना है। हबक्कूक ने यहूदा पर आए बेबीलोनी संकट के दौरान और उससे पहले सेवकाई की थी, और फिर इस कारण हबक्कूक ने दो बड़ी समस्याओं के विषय में परमेश्वर से बात की। एक ओर अध्याय 1:2-4 में उसने इसराइल के पापों और परमेश्वर के विरुद्ध इसराइल के विद्रोह करने के विषय में विलाप किया, और फिर अध्याय 1 बेबीलोनियों के आक्रमण में परमेश्वर के दंड की भयानक परिस्थिति पर विलाप किया। हमें परमेश्वर के लोगों के पापों पर भविष्यवक्ता के विलाप को देखते हुए आरंभ करना चाहिए। अपनी पुस्तक के आरंभिक पद में हबक्कूक ने परमेश्वर के लोगों के पापों को दर्शाया और परमेश्वर के सामने रोया। हबक्कूक अध्याय 1:2 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हबक्कूक इस बात से बहुत व्याकुल था कि परमेश्वर ने यहूदा की नैतिक दशा के विषय में उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना था। कई अन्य भविष्यवक्ताओं के समान वह भी राष्ट्र में फैलते जा रहे अन्यायों के कारण चिंतित था, और इसीलिए अध्याय 1:4 में हम पढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। हबक्कूक इस बात से व्याकुल था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के पापों के विरुद्ध दंड नहीं दिया। उसने कुंठित और असहाय महसूस किया। हबक्कूक की आरंभिक प्रार्थना उस महत्वपूर्ण रूप को दर्शाती है जिसमें भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के प्रति अपने हृदयों को व्यक्त किया था। जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों के दर्द और कष्टों को देखा तो वे परमेश्वर के समक्ष रोए और दूसरों को भी विलाप करते हुए रोने के लिए बुलाया। जैसा कि हम देख चुके हैं, हबक्कूक परमेश्वर के समक्ष रोया कि वह यहूदा के लोगों को उनके पापों के लिए दंड दे। और जब हम हबक्कूक की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अध्याय 1:5-11 में परमेश्वर ने यह कहते हुए हबक्कूक की प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया कि वह शीघ्र ही यहूदा के दुष्ट लोगों को दंड देगा, जैसा कि हम अध्याय 1:6 में पढ़ते हैं। देखो, मैं कसदियों अर्थात बेबीलोनियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराय वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह यहूदा में अन्याय करने वालों के विरुद्ध दंड देने की भविष्यवक्ता की पुकार का उत्तर देगा। अब परमेश्वर हबक्कूक को दिए अपने प्रत्युत्तर में सच्चा था, और उसने बेबीलोन के लोगों को वाचाई दंड के रूप में भेजा, और उन्होंने यहूदा को अपने अधीन कर लिया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर जब परमेश्वर ने दंड दे दिया तो हबक्कूक ने फिर से परिस्थिति की ओर देखा एवं एक और मुख्य प्रकार का विलाप दर्शाया जो हम भविष्यवक्ताओं में पाते हैं, अर्थात परमेश्वर के दंड पर विलाप। सुनिए किस प्रकार वह बेबीलोन के लोगों के अधीन यहूदा के दुखों के विषय में प्रार्थना करता है। हबक्कूक अध्याय 1:13 में हबक्कूक इन शब्दों को कहता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? भविष्यवक्ता जानता था कि परमेश्वर के लोगों ने भयंकर पाप किए थे, परंतु अब उसने महसूस किया कि बेबीलोन के पाप तो उनसे भी भयंकर थे। बाहरी अत्याचारियों के अधीन दर्द और कष्टों ने हबक्कूक को एक बड़े विलाप के साथ परमेश्वर के समक्ष गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था, और हबक्कूक की गिड़गिड़ाहट के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने अध्याय 2:2-20 में भविष्यवक्ता को बताया कि एक दिन वह बेबीलोन के लोगों को उनके अत्याचार के कारण दंडित करेगा। उदाहरण के तौर पर अध्याय 2:8 में हम बेबीलोन के लोगों के प्रति इन शब्दों को पढ़ते हैं, तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। परमेश्वर के दंड की कठोरता पर हबक्कूक का विलाप स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचा, और परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि बेबीलोन का विनाश होगा। भविष्यवक्ताओं की सभी पुस्तकों में हम पाते हैं कि प्रभु के इन सभी सेवकों ने उनके बोझ को लेने के लिए प्रभु के सामने विलाप किया। हम कभी कभी पाते हैं कि इसराइल के लोगों को यह आश्वासन देने के लिए कि उनके शत्रु नष्ट किए जाएंगे, वे अन्य जाति के राष्ट्रों के लिए भी विलाप करते हैं, परंतु सामान्यतः उन्होंने प्रभु के सामने यह बोझ इसलिए रखा कि लोग यह जान लें कि उनके पाप कितने भयंकर थे और वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाए। विलाप एक वह तरीका है जिसमें भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के साथ बातचीत की। अब हमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पाए जाने वाली प्रार्थना के दूसरे मुख्य प्रकार की ओर मुड़ना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति। जिस प्रकार भजनों में परमेश्वर की स्तुति के अनेक उदाहरण हैं, उसी प्रकार भविष्यवक्ताओं ने भी प्रभु से बात करने के लिए इस प्रकार के अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। सामान्यतः उन्होंने उसकी महान वाचाई आशीषों के लिए परमेश्वर की स्तुति की। जब भविष्यवक्ताओं ने देखा कि परमेश्वर क्या करने जा रहा था, तो स्तुति करते हुए उसके पास आए। परमेश्वर की स्तुति भविष्यवक्ताओं की अनेक पुस्तकों में पाई जाती है। यह भविष्यवक्ताओं में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पुस्तक के अंत में प्रकट होने वाली परमेश्वर की स्तुति पर ध्यान देते हुए हबक्कूक की पुस्तक को समाप्त करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, हबक्कूक की अधिकांश पुस्तक में हम मुख्य रूप से भविष्यवक्ता के विलाप और उसके विलाप के प्रति परमेश्वर के प्रत्युत्तर को देखते हैं, परंतु पुस्तक का अंतिम अध्याय विलाप से स्तुति की ओर मुड़ जाता है। जब परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा कर दी कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण बेबीलोन के लोगों को नाश करेगा। हबक्कूक प्रभु को अद्भुत स्तुति चढ़ाता है। हबक्कूक में हम किस प्रकार की स्तुति पाते हैं? सारे भविष्य वक्ताओं में परमेश्वर की स्तुति में दो विषय महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। जब भविष्य वक्ता स्तुति के साथ प्रभु का सम्मान करते हैं तो उसके दंड और आशीषों के लिए उसकी स्तुति करते हैं। जब हम हबक्कूक की पुस्तक का तीसरा अध्याय देखते हैं तो हम देखेंगे कि उसने भी इसी शैली को अपनाया है। हबक्कूक अध्याय 3 पद 11 से 12 में भविष्यवक्ता इन शब्दों को कहता है, तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। यहां पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता अन्य जाति के राष्ट्रों पर प्रहार करने और उन्हें दंड स्वरूप नाश करने की अपनी योग्यता के लिए परमेश्वर का सम्मान करता है। दंड के लिए स्तुति का यह विषय भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में बहुत जगहों पर प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर भविष्यवक्ता यशायाह अध्याय 40 पद 22 और 23 में इस प्रकार स्तुति करता है, परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। जब हम ऐसे अनुच्छेदों में आते हैं जहां हम उसके दंड के लिए परमेश्वर की स्तुति को पाते हैं तो हम प्रायः बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। आज मसीही सोचते हैं कि हमें केवल पृथ्वी पर उसके आशीषों के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है, संसार परमेश्वर के लोगों को सताता है और परिणाम स्वरूप जब परमेश्वर उन्हें दंडित करता है जो उसके लोगों को सताते हैं, तो परमेश्वर के लोगों को उसकी स्तुति करनी चाहिए। भविष्यवक्ता यह समझ गए थे और इसलिए उन्होंने उसके दंड के लिए प्रभु की स्तुति की। दंड और आशीष के बीच का संबंध हमें भविष्यवाणीय स्तुति के दूसरे केंद्र की ओर लेकर आता है। भविष्यवक्ताओं ने प्रायः न केवल उसके दंड के लिए प्रभु की स्तुति की, बल्कि उन अनेक आशीषों के लिए भी जो वह अपने लोगों को देता है। उदाहरण के तौर पर भविष्यवक्ता हबक्कूक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने दंड में परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए उसकी स्तुति क्यों की। हबक्कूक अध्याय 3 पद 12 और 13 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हां अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। हबक्कूक ने देखा कि एक दिन परमेश्वर दुष्टों को दंड देगा और इसराइल राष्ट्र को छुड़ाएगा और दाऊद के घराने को पुनर्स्थापित करेगा। हबक्कूक ने इन बातों को देखा और परमेश्वर के दंड के लिए उसकी स्तुति की। लगभग इसी प्रकार भविष्यवक्ता यशायाह भी परमेश्वर के अपने शब्दों को अपने ऊपर लेने के द्वारा परमेश्वर का आदर करता है। यशायाह अध्याय 44 पद 24 में ये शब्द प्रकट होते हैं, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। फिर अध्याय 44 पद 24 और 26 में भविष्यवक्ता यह कहता है, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। भविष्यवक्ता ने न केवल उदासी और विलाप की प्रार्थना की बल्कि परमेश्वर को एक बड़ी उल्लासपूर्ण स्तुति भी प्रदान की, और जब मूल पाठकों ने इसे पढ़ा तो वे भी परमेश्वर की स्तुति करने को भाव विभोर हो गए। जब हम आशीषों और दंड के लिए भविष्यवक्ताओं की ओर से प्रभु की स्तुति के शब्दों को सुनते हैं, तो हमें भी परमेश्वर की स्तुति में उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। इस अध्याय में अब तक हमने देखा है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ऐतिहासिक वर्णन और परमेश्वर के साथ भविष्यवक्ताओं की वार्तालाप पाई जाती है। अब हम साहित्य की तीसरी श्रेणी की ओर आते हैं, जो हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पाते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप। जितना महत्वपूर्ण यह जानना है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ऐतिहासिक वर्णन थे, उनमें प्रार्थनाएं थीं, उतना ही यह भी है कि ये शैलियां उस मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं करती जिसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को बुलाया था। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उसके राजदूत होने के लिए राजाओं और दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के लोगों से बात करने के लिए बुलाया था, और परिणाम स्वरूप उनके वचनों के अधिकांश भाग लोगों के लिए परमेश्वर के संदेश थे। और इसलिए हमें भविष्यवाणीय सामग्री के भीतर इस प्रकार की शैली की ओर मुड़ना चाहिए। अब हम लोगों के साथ भविष्यवक्ताओं के वार्तालाप के मूल्यांकन को तीन भागों में बांटेंगे, दंड के कथन, आशीष के कथन और वे कथन जो मिश्रित थे या इन दोनों पहलुओं के बीच के थे। आइए पहले हम उन कुछ प्रकारों को देखें जिनमें भविष्यवक्ताओं ने वाचा के लोगों के प्रति दंड की घोषणा की थी। हाल ही के दशकों में भविष्यवाणी की पुस्तकों के शोध और अन्य संस्कृतियों के साहित्य के साथ उनकी तुलना ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने सामान्यतः लोगों को अपनी बातें विशिष्ट प्रारूपों या तरीकों में कहीं। कथनों के ये प्रारूप लचीले थे और भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपनाए जा सकते थे, परंतु कथनों के तीन मुख्य प्रकारों का प्रयोग वाचाई दंड की घोषणा करने के लिए किया गया था। वे हैं दंड के वचन, हाय के वचन और मुकदमे। आइए पहले हम दंड के वचनों की ओर देखें। दंड के वचन सबसे सामान्य प्रकार के कथन हैं जो पुराने नियम की भविष्यवाणी में पाए जाते हैं। दंड के एक विशिष्ट वचन में दो मुख्य घटक पाए जाते हैं। पहला, एक दोषारोपण होता है जिसमें भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों के पापों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा, दंडादेश, और इस दंडादेश में भविष्यवक्ता घोषणा करता है कि अपने पापों के कारण लोग किस प्रकार के वाचाई श्राप का अनुभव करेंगे। कभी कभी इन दोनों घटकों के क्रम को उलट दिया जाता है, या फिर भविष्यवक्ता इन दोनों में से कोई एक बारी बारी से घोषित करता है। कुछ अवसरों पर दंड की वाणी को संक्षिप्त कर दिया जाता है जिससे केवल इसमें दोषारोपण रहता है या फिर दंडादेश, परंतु अधिकांशतः भविष्यवक्ता दोषारोपण और दंडादेश के द्विरूपीय प्रारूप का ही अनुसरण करते हैं। उदाहरण के तौर पर आमोस अध्याय 4:1-3 में आमोस ने सामरिया के विरुद्ध दंड के वचन कहे। उसने सामरिया की धनी पेटू स्त्रियों के विरुद्ध दोषारोपण के साथ आरंभ किया। अध्याय 4:1 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए। हम यहां पर देखते हैं कि आमोस सामरिया की स्त्रियों पर उत्तरी इसराइल के गरीबों को हानि पहुंचाने का दोष लगाता है। गरीबों की आवश्यकता पूरी करने की अपेक्षा उन्होंने अपनी पेटू जरूरतें पूरी करने के लिए अपने पतियों को बुलाया। दंड के वचनों के अनुरूप ही आमोस अध्याय 4:2-3 उन लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के दंडादेश की घोषणा की ओर आगे बढ़ता है जिन्होंने अपनी इस वाचाई जिम्मेदारी को तोड़ा है। सुनिए आमोस अध्याय 4:2-3 क्या कहता है। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे और तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। संक्षिप्त में कहें तो आमोस ने भविष्यवाणी की कि सामरिया का नाश होगा और धनी स्त्रियां बंधुआई में भेज दी जाएंगी। दंड के वचनों के अतिरिक्त पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने प्रायः एक ऐसे प्रारूप में वाचाई श्रापों की घोषणा की जिसे हाय के वचन कहा जाता है। हाय के वचन दंड के वचनों के बहुत ही समान हैं, जिसमें प्रायः दोषारोपण के बाद दंडादेश आता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि इनकी शुरुआत हाय के साथ होती है। हाय के वचन का एक उदाहरण यशायाह अध्याय 5 पद 8 से 10 में पाया जाता है। वहां भविष्य वक्ता घोषणा करता है कि लोगों ने सारी भूमि खरीदकर गरीब लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया था। हाय की अभिव्यक्ति यशायाह अध्याय 5 पद 8 में आती है। यशायाह कहता है, हाय उन पर। जो यशायाह कहने पर है वह आशीष की बात नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से श्राप के शब्द हैं। उसके वचनों के दोषारोपण अध्याय 5 पद 8 की हाय की अभिव्यक्ति का अनुसरण करता है। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। हमें सदैव यह याद रखना है कि मूसा के दिनों में परमेश्वर ने स्थापित किया था कि हर परिवार के पास स्थायी संपत्ति की सुरक्षा होगी। यशायाह के दिनों में धनी यहूदियों ने जितनी संपत्ति वे खरीद सकते थे उतनी खरीदकर इस वाचा का उल्लंघन किया। इसलिए यशायाह अध्याय 5 पद 9 और 10 में भविष्यवक्ता वाचा का उल्लंघन करने वाले इन लोगों के विरुद्ध दंडादेश की घोषणा करता है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। यशायाह अध्याय 5 पद 9 से 10। अन्य कई भविष्यवाणियों के समान हम यहां पर देखते हैं कि यह सजा अपराध के अनुरूप है। धनी लोगों ने संपत्ति एकत्रित करके अपने आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था, परंतु परमेश्वर यह सुनिश्चित कर रहा था कि उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएं। इस प्रकार के हाय के वचन सारे भविष्यवक्ताओं में पाए जाते थे। दंड और हाय के वचनों के अतिरिक्त भविष्यवक्ताओं ने मुकदमों के रूप में वाचाई श्रापों को घोषित किया था। इब्रानी शब्द रिब को प्रायः इस प्रकार के कथनों के साथ जोड़ा जाता है। सामान्यतः रिब का अर्थ होता है प्रयास करना या विवाद करना, परंतु इसने भविष्यवक्ताओं में एक अलग ही अर्थ को ले लिया था। यह कानूनी प्रयास को दिखाता है। यह कानूनी प्रक्रिया या मुकदमे के लिए एक तकनीकी शब्द है जो महान राजा यहोवा के स्वर्गीय न्यायालय में होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि भविष्यवक्ता प्रायः परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के स्वर्गीय दर्शन देखते थे और अनेक बार परमेश्वर के सिंहासन कक्ष को न्यायालय के रूप में देखा जाता था और परिणाम स्वरूप यह शब्द निकल कर आता है। परमेश्वर को अभियोक्ता और न्यायी दोनों के रूप में देखा जाता है। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ गवाहों को बुलाया जाता है और परमेश्वर के लोग प्रतिवादी होते हैं जिन पर परमेश्वर के द्वारा दोष लगाया जाता है। अब सामान्यतः हम भविष्यवक्ताओं में पूरे विकसित मुकदमे नहीं पाते हैं, परंतु बहुत बार हमें संशोधित मुकदमे मिलते हैं। रिब या मुकदमे में कई तत्व पाए जा सकते हैं। पहला, जिस प्रकार हम न्यायालय के दृश्य में अपेक्षा करते हैं, न्यायालय में बुलावा होता है, गवाहों को पहचाना जाता है, तब परमेश्वर समीक्षा करता है कि वह आरोपियों के प्रति कितना दयालु रहा है और प्रायः किसी न किसी प्रकार का प्रत्युत्तर दिया जाता है। और कभी कभी स्वयं भविष्यवक्ता द्वारा, और तब दंडादेश के साथ परमेश्वर का दोषारोपण आता है। पूरे मुकदमे का एक सर्वोत्तम उदाहरण मीका अध्याय 6 पद 1 से 16 में प्रकट होता है। पद 1 में हम न्यायालय में बुलावे को सुनते हैं। सुनिए प्रभु क्या कहता है। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाए। तब पद 2 में स्वयं गवाहों को संबोधित किया जाता है। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी के अटल नेव, यहोवा का वाद विवाद सुनो। गवाहों के इस संबोधन के बाद परमेश्वर अपने लोगों को अपनी दया के न्यायालय के बारे में याद दिलाता है। पद 3 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया और क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है। तब भविष्यवक्ता मीका पद 6 से 8 में परमेश्वर के प्रश्न का नम्रता में प्रत्युत्तर देते हुए लोगों के लिए बोलता है। वह पद 6 में कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। तब राष्ट्र के दोष को स्वीकार करते हुए मीका पद 8 में यह निष्कर्ष निकालता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। भविष्यवक्ता के प्रत्युत्तर को देखते हुए हम पद 10 से 12 में दोषारोपणों को और पद 13 से 16 में दंडादेशों को पाते हैं। इस अनुच्छेद के समान भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में मुकदमे परमेश्वर द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और अपने लोगों को दंड की चेतावनी देने के तरीके के रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उसके दंड की ही घोषणा नहीं करते, वे यह घोषणा भी करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषें भी देगा। मूलतः दो ऐसे तरीके हैं जिनमें भविष्यवक्ता अपने लोगों के लिए दैवीय आशीषों की घोषणा करते हैं। एक ओर भविष्यवक्ता परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं के विरुद्ध दंड की घोषणा करते थे, और दूसरी ओर वे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से आशीषों की घोषणा करते थे। आइए पहले देखें कि शत्रुओं पर दंड किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष बनता है। इसराइल के पूरे इतिहास में विदेशी राष्ट्रों ने परमेश्वर के लोगों को परेशान किया, और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए बड़े उपहारों और आशीषों की घोषणा करने का एक तरीका अपने भविष्यवक्ताओं से इन शत्रुओं पर दंड की भविष्यवाणी करवाना था। फलस्वरूप हम भविष्यवक्ताओं की सभी पुस्तकों में अन्य जाति के शत्रुओं के लिए दंड के वचनों, हाय के वचनों और मुकदमों को पाते हैं। उदाहरण के तौर पर नहूम अध्याय 3 पद 1 में हम नीनवे के विषय में ये शब्द पढ़ते हैं, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। अन्य जाति के शत्रुओं के विरुद्ध दंड और हाय के वचनों और मुकदमों के द्विपक्षीय उद्देश्य थे। उन्होंने घोषणा की थी कि परमेश्वर उन्हें इसराइल के शत्रुओं के हाथ सौंप देगा, परंतु उनमें आश्वासन देने का सकारात्मक उद्देश्य भी था कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा भी। शत्रुओं पर दंड की घोषणा के अतिरिक्त भविष्यवक्ताओं ने आशीष के वचनों की घोषणा के द्वारा इसराइल के लिए आशा के शब्द भी कहे। आशीषों की घोषणाएं अपनी रचना में बहुत ही लचीली थीं और वे भिन्न भिन्न प्रकार की थीं, परंतु फिर भी मूलभूत प्रारूप सदैव प्रकट होता है। पहला, परिचयात्मक संबोधन प्रकट होता है, और फिर आने वाली आशीष का कोई कारण दिया जाता है। फिर घोषणाएं स्पष्ट करती हैं कि वह आशीष क्या होगी। उदाहरण के तौर पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने अध्याय 35 पद 18 और 19 में रेकाबियों के लिए आशीष की घोषणा की। पद 18 के पहले भाग में हम इन वचनों के परिचय को पाते हैं। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है। इस परिचयात्मक सिद्धांत के बाद वह कारण आता है जिसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने जा रहा है। पद 18 के दूसरे भाग में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है। तब पद 19 में आशीष की घोषणा आती है। रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। आशीष का एक और जाना पहचाना वचन यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 से 34 में प्रकट होता है। पहले परमेश्वर पद 31 से 33 में आशीष की घोषणा करता है। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। भविष्यवक्ता ने एक नई वाचा की आशीष की घोषणा की जो इसराइल के बंधुआई से लौट आने के बाद आएगी। तब यिर्मयाह अध्याय 31 पद 34 में हम इस आशीष के कारण को पाते हैं। मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। क्षमा में परमेश्वर के अनुग्रह ने नई वाचा की प्रतिज्ञा के आधार की रचना की। यहां तक हम देख चुके हैं कि भविष्यवक्ताओं ने विशिष्ट तरीके के कथन कहे जिन्होंने परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर के श्रापों दोनों के बारे में बात की, परंतु बहुत बार भविष्यवक्ताओं में हमें मिश्रित कथन भी मिलते हैं। अब ये मिश्रित कथन कई विभिन्न रूपों में आते हैं और हम उनमें से कुछ पर ही ध्यान दे पाएंगे, परंतु हमें यह याद रखना होगा कि इन मिश्रित कथनों में परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर के श्रापों दोनों का उल्लेख करने की क्षमता होती है। पहले हम दंड उद्धार के वचनों के बारे में बात करते हैं, जहां एक ही कथन में कुछ को दंड की चेतावनी दी जाती है और कुछ को आशीषें प्रदान की जाती हैं। यशायाह अध्याय 57 पद 14 से 21 मिश्रित कथन का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें दुष्टों के लिए दंड के शब्द और धर्मियों के लिए उद्धार के वचन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बार भविष्यवक्ता लोगों को दंड की चेतावनी देते हुए और पश्चाताप करने वालों को आशीष की प्रतिज्ञा करते हुए पश्चाताप करने की बुलाहट देते हैं। पश्चाताप की बुलाहट का एक उदाहरण यशायाह अध्याय 55 पद 6 से 13 में पाया जा सकता है। वहां भविष्य वक्ता परमेश्वर के लोगों को उनके बुरे मार्गों से हटने की बुलाहट देता है। कई बार भविष्य वक्ता अपने श्रोताओं को युद्ध के लिए बुलाते हैं। पुनः ये बुलाहटें मिश्रित हैं, क्योंकि वे विजय या फिर पराजय की बुलाहटें हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर होशे अध्याय 5 पद 8 से 11 में हम परमेश्वर के दंड का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु युद्ध की बुलाहट को पाते हैं। मिश्रित कथनों का एक और उदाहरण भविष्यवाणीय विवाद है। भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ताओं के साथ विवाद में पड़ जाते थे। उदाहरण के तौर पर मीका अध्याय 2 पद 6 से 11 में भविष्यवक्ता ने झूठे भविष्यवक्ताओं के दृष्टिकोणों के विरुद्ध वाद विवाद किया। विवाद आने वाली आशीषों या श्रापों की घोषणा करते हैं। अंत में भविष्यवक्ताओं ने दृष्टांतों की शैली में मिश्रित संदेशों की घोषणा की। दृष्टांत परमेश्वर के अनुग्रह की सकारात्मक घोषणा या उसके दंड की नकारात्मक घोषणा हो सकते हैं। यशायाह अध्याय 5 पद 1 से 7 भविष्यवक्ताओं में दृष्टांत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहां भविष्यवक्ता यशायाह ने इसराइल की तुलना एक दाख की बारी से की। कई प्रकार के मिश्रित वचन हैं जिन्हें हम सभी भविष्यवक्ताओं में पाते हैं, परंतु फिर भी जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि ये कथन या तो वाचाई आशीषों या फिर श्रापों की घोषणा करने के कार्य कर सकते हैं। हम देख चुके हैं कि भविष्यवाणीय साहित्य में भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखे कई प्रकार के कथन पाए जाते हैं। ऐतिहासिक वर्णनों और परमेश्वर से बातचीत के अतिरिक्त भविष्यवक्ताओं ने लोगों के पास परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में काफी समय बिताया। यह कल्पना करना कठिन है कि हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पाई जाने वाली विभिन्न शैलियों को पहचानने को नजरअंदाज कर दें। कई बार हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हुए खो जाने या असमंजस में पड़ जाने का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम उन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से परिचित नहीं हैं जो हमें वहां मिलती हैं। हम देख चुके हैं कि हमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ऐतिहासिक वर्णन और परमेश्वर एवं लोगों के साथ वार्तालाप मिलते हैं। जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं और इन शैलियों को विभिन्न प्रकारों को मन में रखते हैं, तो हम यह बहुत अच्छी रीति से समझ पाएंगे कि अपने समय में उन वचनों का क्या अर्थ था और आज हमारे लिए उनका क्या अर्थ है।